الله أكبر. پھر فرمایا اب یہ بھی ایسے کلمے کی مثال ہے جو کہ مضبوط ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا, ثابت رکھتا ہے, جما کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, کن کو, جو ایمان لائے, اللہ ان کو جما کے رکھتا ہے. کس طرح؟ بالقول ثابت, قول ثابت سے. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ, یہ قول ثابت ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثبات دیتا ہے, جما کے رکھتا ہے. کب کب ایمان والوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جم جائے؟ فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, وہ فی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ دونوں جگہ جما کے رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے کلمے کی وجہ سے. یہ عقیدہ, یہ کلمہ طیبہ, اس کی وجہ سے اللہ جماتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے پھر اس ایمان پہ جمنا بھی تو ہے نا, ثابت قدمی بھی تو ضروری ہے نا. اب دیکھ, منافق لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ثبات ہی نہیں, اس کے بعد جماؤ ہی نہیں, ذرا حالات کچھ اتنے مشکل ہوئے پھر چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے, وہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. جو مومن ہوتا ہے, جو انسان ایک کلمے کے اوپر جم جانے والا ہوتا ہے, اللہ پھر اس کی مدد فرماتا ہے اس کو جمنے میں, اکھڑنے نہیں دیتا اس کو. پھر کسی موقع پہ بھی, جہاں پہ مشکل حالات آتے ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو تھام لیتا ہے. پھر مومن پھر ڈٹا رہتا ہے. تو یہ قول ثابت جو ہے نا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثبات دیتا ہے, یہ پختہ بات ہے, یہ کلمہ توحید ہے, یہ سچی گواہی ہے جو انسان دل سے دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اسی لیے بخاری میں جو حدیث ہے نا کہ جب ایک مومن جب قبر میں سوالوں کے جواب میں ہوگا, تو یہ کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ ثبات دے گا. آپ کو پتہ ہے, آپ سب بہت گھبراتے ہیں ایگزام سے, ٹیسٹ سے بہت گھبراتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں پڑھتی, مجھے ٹیسٹ دینا پڑے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ ایک بہت بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ قبر میں بھی ہے. جی ہاں, قبر میں بھی ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹوں سے کہاں تک بچیں گے؟ قبر میں بھی انسان کو آزمایا جائے گا, اور وہ بہت سخت آزمایا. ایشو کی حدیث میں آتا ہے فتنہ دجال کی طرح انسان آزمایا جائے گا. جو یہاں پہ دجال کے فتنے سے بچ بھی جائیں تو قبر کے اندر اتنا بڑا ٹیسٹ ہونے والا ہے, اس میں بھی تو ثابت قدمی چاہیے. اس میں کیسے بولیں گے کہ ہم جب سوالات ہوں گے یا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جب پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, تو اس وقت انسان کو ضرورت ہوگی کہ وہ جم جائے. وہ کون جمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر یہ دعا فرمائی تھی, اللہم ثبته بالقول الثابت, اللہ اس کو جما دے قول ثابت کے ساتھ. اللہ اکبر. تو انسان کو دنیا میں بھی جماؤ چاہیے. دنیا کے بھی تو حالات ایسے آتے ہیں نا, اپس اینڈ ڈاؤن, ان کے زندگی میں مشکل مرحلے آتے ہیں, تو وہاں پہ بھی تو ثابت قدمی چاہیے. یہاں پہ ثابت قدم رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں, یہ جب احد کا وقت تھا اور مسلمان لڑ کے, اور اس کے بعد جو اتنا نقصان ہوا اور واپس پلٹے, تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ کافر تو واپس تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تو بجائے ڈرنے کے وہ کیا بولے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے, کہ انسان پھر ڈھاواں ڈول نہیں ہوتا, پھسل نہیں جاتا, چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا, یہ کیوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا. ایسا نہیں کرتا پھر وہ, اللہ تھام لیتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں فرعون کے جو جادوگر تھے, ان کو دیکھ لیں آپ, जब ईमान नहीं लेकर आए थे तो बार्गेनिंग कर रहे थे फिरौन के साथ, हमें क्या दोगे क्या दोगे, और जब ईमान ले आए तो फिर ऐसा ही ईमान था कि फिरौन कह रहा है मैं तुझे इतनी सख्त धमकियां देता था, मैं तुम लोग उल्टे हाथ पैर काट दूंगा उल्टी सिमट से, और तुम लोगों को सूली पे चढ़ा दूंगा और ऐसे करूंगा, लेकिन वो कहते हैं अब हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमें परवाह ही नहीं, मरने के बाद हमें अल्लाह से ही तो मुलाकात करनी है। वो डावा डोल नहीं हुए, वो उल्टे पैर नहीं फिरे, वो वापस नहीं भागे, वो जो जमाव है ना वो अल्लाह ताला देता है। तो जिंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, अल्लाह ताला हर मरहले में इंसान की मदद करता है कि वो जम जाए इसी के ऊपर, और मौत के मराहल में भी आपको पता है मरने के वक्त भी ये शैतान बड़े ये हमले करता है। ये ऐसा खबीस है जो इंसान को उस वक्त भी नहीं छोड़ता, उस वक्त तो बल्कि ज्यादा उसके पीछे पड़ता है, ताकि यहीं पे ये कुछ कलमा कुफर कह दे, और ये इसको ताकि उस वक्त मौत आए ये कुफर के कलमे के साथ। इसलिए तो हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ईमान पे खात्मा करना, अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमाना, कलमा नसीब करना। कलमा नसीब भी हर एक को नहीं होता। फिर कब्र के मरहले, जैसे मैंने आपको बताया कब्र के मरहले बड़े ही सख्त है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं थी, आप बैठ गए और सहाबा भी आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में जो तिनका था उससे आपने जमीन पे लकीरें खींची और सर उठा के 2-3 दफा फरमाया कि अजाबे कब्र से अल्लाह की पनाह चाहो। बंदा जब दुनिया की आखिरी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके पास आसमानों से फरिश्ते आते हैं, जो अगर वो मोमिन है तो नूरानी फरिश्ते आते हैं, अगर वो काफिर है, अगर वो फासिक है, अगर वो मुनाफिक है, अगर वो फाजिर है, अगर वो मुशरिक है, तो फिर ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनको देख के भी इंसान खौफजदा हो जाए। तो ये जो इंसान की वहां पे ऐसी कब्र की मंजिलों के अंदर साबित कदमी है, वो भी अल्लाह ही ने देनी है, अल्लाह ही मजबूत रखता है उस वक्त भी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक मुश्किल का वक्त है इंसान के लिए। और हजरत बर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत से कुरान कुरान की इस आयत से अजाब कब्र का सबूत मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना दुनिया की जिंदगी में और आखरत में भी, आखरत की तो पहली मंजिल ही है। और इससे हजरत अब्दुल्ला ने इसकी तफसीर में फरमाया था कि इससे कब्र के सवालों के जवाब में मोमिन को जो इस्तकामत है ना मिलना, वो है मुराद। और ये तभी होगी ना जिस वक्त दुनिया की जिंदगी के अंदर भी इस्तकामत से इसके ऊपर चलते रहे। आप देखिए बाज लोग ऐसी नादानी का सबूत देते हैं कब्र के पास जाके, वो तेरे से अभी सवाल हो रहे होंगे, तेरे से कोई पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तू ये जवाब देना तुझे। आप सोचते हैं कि जैसे दुनिया में हम चीटिंग करा लेते थे, बाहर खड़े होके सवालों के जवाब बता रहे हैं लोगों को, इसी तरह हम पता नहीं कब्र वाले को भी बता देंगे, या उसको रट्टा लगवा के भेज दें, आप रट्टा लगवा दें उसको, जो याद करवा देंगे जब तुझे ये पूछेंगे ना ये कहना, या कोई झूठी बोल दे शायद जाके उस वक्त। तो असल बात ये नहीं है कि उस वक्त ये होगा कि हम किसी जगह से सुन लें या किसी ने हमें बता दिया, या हमें तो अरबी नहीं आती, हमें क्या पता कैसे फरिश्तों को जवाब देना, हम तो कुछ और का और ही ना जवाब देने, ऐसी बात नहीं है। जिसने अपनी दुनिया की जिंदगी इस मुताबिक गुजारी होगी कि अल्लाह ताला को अपना रब बनाया, उसके मुंह से खुद ब खुद अल्लाह ताला उस वक्त सबात देगा, अल्लाह उस वक्त उसको इस्तकामत देगा, उसके मुंह से निकलेगा कि अल्लाह मेरा रब है। जब उसे पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, जिसने इस दीन के ऊपर जिंदगी गुजारी, इसको इसके ऊपर चला, इस्लाम के ऊपर, इसको इस काबिल समझा कि इसके मुताबिक मैं जिंदगी गुजारी, बहुत सारे लोग तो इस काबिल ही नहीं समझते इस्लाम को कि इसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारे, तो बैकवर्ड समझते हैं, उससे मुंह से निकलेगा इस्लाम। जिसने नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिसने उनकी जिंदगी को एग्जाम्पल बनाया और उनकी जिंदगी के मुताबिक चला, सुन्नतों के मुताबिक चला, जैसे उन्होंने फरमाया वैसे चला, उसके मुंह से निकलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है ना, लोग मुंह फेरते हैं, अभी उनकी वापसी की चाल की जूतियों की आहट होती है और वो सुन रहा होता है मुर्दा कि ये लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के, अभी उसके कानों में ये आवाज आ रही होती है उनके चलने की कि वो जा रहे हैं, کہ اسی وقت فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا کے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جس نے ایسا نہیں کیا، ایسی زندگی نہیں گزاری، جانتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو جواب نہیں آئے گا. حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا آگے سے ہا ہا ہا، ایسے کرے گا، اور پھر کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، یہ ہا 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 کیا ہے؟ اسے پتا چلا کہ جیسے نا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جیسے مجھے پتا ہے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس سے بولا ہی نہیں جائے گا. آپ دیکھیں نا، ایک وقت آتا ہے کبھی زیادہ مشکل امتحان ہو تو انسان کی زبان ہی گنگا ہو جاتی ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنا فون نمبر ہی بھول جاتا ہے، ہمیں اپنا ایڈریس ہی بھول جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ تو دنیا کی زندگی ہے، وہ تو اتنا مشکل ایسی مخلوق کے سامنے انسان کا سامنا ہوگا. اس وقت انسان کی زبان چل پڑے، اس وقت انسان کی زبان صحیح بات بول دے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو ہمیں تو دنیا میں بھی، دنیا کے اس پل سے رات پہ گزرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے کہ وہ ہمیں ثابت رکھے، ہمیں موت کے وقت بھی اس کی مدد چاہیے کہ وہ وہاں پہ ہمیں ثابت رکھے جب شیطان کے حملے ہو رہے ہیں، ہمیں قبر میں بھی اس کی مدد چاہیے کہ جس وقت منکر نکیر آ کے سوال جواب پوچھے تو ہماری زبان سے حق بات ہی نکلے اور اس کے سوا کچھ نہ نکلے، مگر اس بندے کے منہ سے ہا 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 ایسے ایسے آوازیں نکل رہی ہوں گی اور کچھ نہیں نکلے گا، زبان شل ہو جائے گی. تو اس سے پتا چلتا ہے اس چیز کا تعلق رٹے لگوانے سے، عربی جاننے سے، باہر سے چیٹنگ کرانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزار کے آیا ہے. اللہ اکبر. تو جس نے عقیدہ توحید کے اوپر زندگی گزاری ہوگی، اللہ اس کو ثابت رکھے گا، اور آخرت میں بھی، آخرت کے مرحلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا. ظاہر آخرت میں بھی سوال جواب ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے، اور جو سوال کے جواب دے دے گا آپ کو پتا ہے قبر میں بھی وہ آرزو کرے گا، کہے گا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لوگوں کو جا کے خوشخبری دوں، تو ٹھہرو میں جا کے ان کو بتاؤں. کہتے نہیں اب نہیں تم جا سکتے. ایسے طاووس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ثابت قدمی یہ ہے کہ کلمہ توحید پہ انسان جم جائے، سے نہ ہٹے، اور آخرت میں ثابت قدمی یہ ہے کہ منکر نکیر کے جواب اس کو آ جائے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک بات ہے جو کبھی ہم سوچتے شاید نہیں ہوں کہ یہ بھی تو کتنا مشکل مرحلہ ہے. قبر کے مرحلے کتنے مشکل ہیں، قبر کے میں انسان کے اوپر جو گزرنی ہے وہ کتنی مشکل، اور اس میں کتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے جو سوچ ثابت رکھنا. اللہ اکبر. تو فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، ظالم بھٹک جاتے ہیں، ظالموں کو اللہ ثبات نہیں دیتا، وہ پھسل جاتے ہیں. ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو حق نہیں دیتا. کس کا نہیں حق دیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کا حق اس کو نہیں دیا، رسولوں کا حق ان کو نہیں دیا، ان کو مان کے ان کے مطابق جو انہوں نے لے کر آئے تھے پیغام اس کے اوپر نہیں چلے. تو جو دنیا میں پھسلتے رہے تو وہاں پہ بھی پھسلیں گے، پھر ہا 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 ہی نکلے گا، وہ کہنا چاہیں گے بھی کہہ نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے. انسان تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ تو جو چاہے کرے. آج انسان کہتا ہے میں جو چاہوں کروں، نہیں، اللہ جو چاہے کرے. ہم تو غلام ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں جو چاہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ثبات دیا وہ بھی ایسے ہی نہیں دیا، وہ جمنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے میں ان کے لیے، دیکھیں موت سے لے کے قبر سے لے کے حشر تک، ہر مرحلے کو ان کے لیے آسان کر دیا. اسی لیے تو وہاں پہ آتا ہے نا، یہ وجوہ یومئذ مسفرہ، दुआ है का तुम मुस्तबशीरा, कोई चेहरे होंगे उस दिन चमक रहे होंगे, खुश होंगे, हंस रहे होंगे। लाओ खौफनाक दिन में भी अल्लाह ताला उनको खुश कर देगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी की। देख ले फिर, जालिमों को हर मौके पे वो फिसल रहे हैं, वो गुमराह हो रहे हैं, वो भटक रहे हैं, और मोमिन की हर मौके पे मदद है। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाह हमें उनमें से करना जिनकी तू हर मौके पे मदद फरमाए, और जिनको तू दुनिया में भी सबात दे, और मरते वक्त भी, और कब्र में भी, और हशर में भी। अब यहाँ पे सारी मिसालें मुकम्मल हो गई, आपने कौले साबित भी देख लिया, आपने कलमा तैयबा की मिसाल भी देख लिया, आपने कलमा खबीसा की मिसाल भी देख ली, आपने काफरों के आमाल की भी मिसाल देख ली। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा इल्लज़ीना बदलू नियामत अल्लाह कुफरा, तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल दिया। अल्लाह की नेमत क्या है? अव्वलीन मुखातिब तो इसके कुरैश मक्का है ना, उन्होंने कैसे बदला था? उनके पास वैसे तो बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, लेकिन कितनी बड़ी नेमत उनके पास आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, वही की सूरत में। और उन्होंने बजाय इस नेमत की कदर करने के, आप पर ईमान लाने की, उन्होंने क्या किया? कुफर किया, उन्होंने उस नेमत को नाशुक्री से बदल दिया। अल्लाह की वही आई उसको मानने से इनकार कर दिया, और कह दिया ये खुद ही बना के ले आए, बजाय शुक्र गुजारी के नाशुक्री, बजाय ईमान लाने के मुखालफत। तो ये कौन लोग थे? ये जो बड़े बड़े उनके सरदार थे, जिनके पीछे लोग चलते थे, तो अगर उनको ले लें तो ये वो लोग थे जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बदर में कत्ल होने वाले मुशरिकीन के सरदार थे। और ये सिर्फ वो नहीं है, ये तो ठीक है उस वक्त कुरान उतरा, अव्वलीन तो वो ही हो गए मक्के के काफिर, मगर इनके बाद भी जो जो लीडर, जो जो अपनी कौम के बड़े, जो जो उनके पास नेमत आई, उनके पास उन्होंने इस्लाम को देख लिया, इसके बावजूद उसकी मुखालफत की, लोगों को उकसाया मुखालफत पे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान के भी और उनका इनकार किया, तो फिर वो क्या है? उन्होंने नेमत को बदल दिया कुफर से। वा अहल्लु कौमहुम दार अल बवार, उन्होंने ला उतारा अपनी कौम को हलाकत के घर में। इनके पीछे जाहिर है चलने वाले थे ना, अपने पीछे पीछे अपने फॉलोअर्स को भी हलाकत के घर तक ले आए। फिरौन को देख ले, उसने भी अपनी कौम को ले जाके दुनिया में भी वो समुंदर में डबोया, और आखरत में तो जहन्नुम की तरफ ले जा रहा होगा, वो लीड कर रहा होगा, पता है आपको, क्यामत के दिन वो आगे आगे होगा, उसके पीछे उसकी कौम होगी, आग की तरफ जा रहे होंगे। तो दुनिया में जितने भी सरदार हैं, चाहे वो दीन के हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो कौम के बरादरी के कोई बड़े हैं, जिनके पीछे भी लोग चलते हैं, अगर वो अल्लाह की नेमत, ये इस्लाम है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको कुफर से बदल देते हैं, ना शुक्री करते हैं, और फिर भी कुफर और शिर्क के रवैये नहीं छोड़ते, तो वो अपनी कौम को हलाकत के घर तक ले आते हैं, ला के उतार देते हैं। तो कौम ने तो पीछे अंधों की तरह चलना होता है, कल अनआम चौपायों की तरह, लोग अंधे धुन जैसे चौपाए होते ना, पीछे 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 चलते जाते, ना कुछ अपनी अकल ना समझ इस्तेमाल करनी, बस एक बकरी आगे चल रही है उसके पीछे दूसरी चल रही है। इसी तरह अक्सरियत का हाल है, जहन्नम, जहन्नम तक। ये अब इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, वाहलु कौमहुम दार अल बवारी, जहन्नम, हलाकत के घर में, जहन्नम में इन्होंने ला उतारा अपनी कौम को, यसलौनहा, झुलसेंगे उसके अंदर, खुद भी झुलसेंगे और अपनी कौम को भी साथ, उनका भी बेड़ा गर्क करेंगे। अब आप देख लें कि उसके बाद जाके वहां पे कौम नहीं है कह सकेगी आपने आंसर सुन लिया ऐसे बड़ों का, कौम ये नहीं उनको कह सकेगी तुम हमें लेकर आए थे अब हमारा कुछ करो। अब असल करार और बड़ा ही बुरा ठिकाना है। और इन्होंने क्या किया इन लीडरों ने? वजालु लिल्लाहि अंदादन, इन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए ना और निद बना लिए हुए थे, अल्लाह के अलावा اور انہوں نے کچھ شریک اس کے بنا لیے، اس کے مثل کسی کوئی اور ہستیوں کو قرار دے دیا۔ اب یہ ہستی بھی ہو سکتی ہے، شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا خواہش نفس، میں اپنی مانوں گی، اپنے آپ کو ہی، اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، بدترین معبود ہے یہ بھی ند بنانا ہے۔ کوئی اور عقیدہ اپنا لیا، وہ بھی ند بنانا ہے۔ یا اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی فالوئنگ شروع کر دی، وہ بھی ند بنانا ہے ان کو۔ تو ضروری نہیں کوئی پرسنالٹی ہی ہو جس کو ند بنایا جائے، کوئی مشغلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جس کو آپ مد مقابل لے آئیں، کمپیٹیٹر بنا دیں اللہ تعالیٰ کا، کوئی اینٹیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے ند بناتا ہے اللہ کا، اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا، صرف یہ کہو ما شاء اللہ، اتنی سی بات کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آج وہ تو استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی چاہت تو نیچے کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اللہ کی چاہت سے بھی استغفر اللہ اوپر کر دیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ تو ٹال ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کی چاہت تو پیچھے رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو اللہ سے بھی آگے چل گئی۔ تو یہ حدیث صاف واضح بتاتی ہے کہ اللہ ہی کی چاہت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ند نہ بناؤ، تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دینا، کسی کو ایسی اہمیت دے دینا کہ اللہ سے بڑھ کے ہو جائے یا اس کے برابر ہو جائے، یہ ند ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ ند، انداد بنا لیے، کچھ شریک بنا لیے، لیدلو عن سبیلی، تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیں۔ انہوں نے کہا کسی اور طرف ہی ان کو لگا دو، خود ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے۔ جب بھی کہیں ند بنائے جاتے ہیں نا، تو پھر ہوتا یہی ہے کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے لوگ اس طرف چل پڑتے۔ کل کہہ دیجئے تمتعاؤ، تم فائدہ اٹھا لو۔ اللہ اکبر، یعنی متاع جو ہے نا تھوڑا فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ۔ تو ہاں جنہوں نے کوئی دنیا میں ند بنائے ہوں گے، دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ان سے مل ہی رہا ہوگا، تھوڑا بہت کچھ لے لیں گے، ان سے کچھ حاصل کر لیں گے، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا مال مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی واہ واہ مل جائے۔ تو مت آؤ، یہاں پہ فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، آگ ہی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قول، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے، جو میرے بندے ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، کیا کریں وہ؟ ان کو کچھ کہہ دیں، وہ کیا کریں؟ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ قائم کریں نماز کو، قائم کریں۔ قائم کرنا یہ نہیں کہ فرمایا پڑھ لیں نماز کو، قائم کر دیں یعنی جو ٹائم ہے اس کا لحاظ رکھنا، جو اس کی شرائط ہیں پاکی کی اور جتنی شرائط نماز کی، وہ ان شرائط کا خیال کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، یہ ساری قائم کرنے میں آتی ہیں۔ آپ کا لباس پاک صاف ہو، آپ کی جگہ پاک صاف ہو، آپ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہوں، آپ تمام اس کے ارکان کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے ادا کرنے والے ہوں، جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں، آپ نے اس چیز کا خیال رکھا کہ وقت جو ہے اس کے وقت داخل ہے نماز کا، تبھی اس نماز کو ادا کیجیے، ایسے نہ کریں کہ پورا دن کی نمازیں رات کو جا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو ساری چیزیں نماز کو قائم کرنے سے متعلق ہیں۔ وضو کرنا یہ بھی اس کے ساتھ کی شرط ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا جائے۔ تو جو بھی جتنی بھی اس کی شرائط ہیں سب کو ہی مانا جائے گا اور پورے اس کے آداب کو خیال رکھا جائے گا، تب نماز قائم ہوگی، ورنہ تو اٹھ کے ایسے ہی کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دے، نہ قبلے کا دھیان ہے، نہ کپڑوں کی پاکی صفائی کا، پڑھ تو لی لیکن قائم نہیں ہوئی۔ اور سارا قرآن قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو قبلے کا تعین کرنا بھی قائم کرنے میں ہے۔ تو اچھا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، نماز اگر پڑھ لی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ بھی پڑھی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اتنی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، तो याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता कयामत के दिन वो किसके साथ होगा, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की कयामत के दिन वो फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ होगा। क्या वो ऐसे लोगों के साथ होना चाहेंगे? उन लोगों का अंजाम फिर क्या होगा? अभी मैंने बताया, तो क्या उनके साथ होना चाहेंगे? फरमाया जिसने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज कयामत के दिन क्या बन जाएगी? नूर बन जाएगी, बुरहान बन जाएगी, निजात बन जाएगी। कौन नहीं उस दिन निजात चाहता, कौन नहीं उस दिन नूर चाहता, कौन नहीं उस दिन दलील चाहता अपने लिए? और फिर देखिए, आप पता नहीं, आपको ये वाली बात शायद ना पता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के वक्त ना, हर नमाज के बाद अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जो मुकर्रर है और वो कुछ पुकारता है। क्या आपको पता है क्या पुकारता है? पता है किसी को? वो पुकारता है, लोगो उठो और उस आग से खुद को बचाने के लिए उठो जिसको तुमने अपने गुनाहों की वजह से जलाया हुआ है, उस आग को बुझाने के लिए, उस आग से खुद को बचाने के लिए, उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए। यानी इसे पता चला कि नमाज जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो असल में हम क्या कर रहे हैं? अपने गुनाहों से जलाई हुई जो आग है ना, उसको हम बुझा रहे हैं, हम फायर फाइटर का काम कर रहे हैं। ये आग हमें जला देगी अगर हमने इसको ना बुझाया, हमारे गुनाहों की वजह से ही जली हुई है, हमने गुनाह कर करके उसको जला दिया हुआ है, अब इसको बुझाने का टाइम है। अल्लाह ताला हमें माफ करे तो कि वो कायम करे नमाज को और इन्फाक करें, मिम्मा रजकना हम, उसमें से जो हमने उनको अता किया उसमें से खर्च करें। क्या वो सिर्फ माल ही है जो आपको अता हुआ है? या कुछ और भी अता हुआ है? नहीं, माल भी अता हुआ है हमें, वक्त भी अल्लाह ताला ने रिस्क दिया हुआ है हमें, सलाहियतें भी दी हैं हमें, घर बार भी दिया है हमें, औलाद भी दी है हमें, खाना पीना भी दिया है हमें, सेहत भी दी है। ये सारी चीजें है अल्लाह का रिस्क जो हमें मिला हुआ है। फरमाया उसमें से खर्च करें, वरना अमवाल कहना कोई मुश्किल बात नहीं है। माल भी अरबिक का लफ्ज भी है, यहाँ पे माल नहीं कहा गया, हम ये सिर्फ माल को समझते, माल भी है, माल भी आप दें, खुले और छुपे खर्च करें। क्योंकि कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक लोगों के दरमियान फैसला नहीं हो कर दिया जाता उस वक्त तक इंसान अपने सदके के साए में खड़ा होगा। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह लोगों का पता नहीं फैसला तो कब होगा? अगर हमें उस वक्त तक साया ना मिला तो हम किधर खड़े होंगे? जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, तो सदका साया बन जाएगा। खड़े होके देखें जरा, गर्मियों के दिनों में 2 मिनट आप बाहर खड़े हो जाएं, ये सूरज की तपिश तब की है जिस वक्त सूरज इतनी दूर है, और जब सूरज इतनी करीब होगा, इतनी करीब होगा, जो सवा नेजे के बराबर कहा गया ना, सही बात है, वैसे ही सुनी सुनाई बातें नहीं है, सही बात है। इतनी करीब होगा उस दिन क्या गर्मी की हालत होगी, जरा खड़े होके देखें आप इसी सूरज के नीचे, जब ये लाखों मील दूर है ये खड़ा हो जाता, और उस दिन कैसे खड़े होंगे? अगर हमें साया ना मिला तो क्या हशर हो जाएगा? जब धूप में जाएं तो ये सोचे कि आज मैं भाग भाग के जल्दी से दरख्त के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, छतरी खोल लेती हूँ, भाग के जाती हूँ, मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, और जब कोई साया ना होगा तो क्या मेरे पास इतना सदका है जो मैंने किया हुआ है कि वो मेरे लिए उस दिन साहिबान बन जाए? जो जितना घना साया चाहता हो, जितना बड़ा अपने लिए साहिबान चाहता हो, वो उतना ही सदका करे। और भी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, अपना वक्त है उसको अल्लाह के रास्ते में दें, अपने आपके पास कोई स्किल्स है उनको अल्लाह के रास्ते में लगाएं। आपकी सेहत अल्लाह ने दी भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे फायदा उठाएं, अल्लाह के रास्ते में लगाएं इसको, सिरम भी और अलानियतन भी। ये यानी छुपा के भी खुले छुपे खर्च करना, ये होता है कि इंसान नफली जो भी काम है छुपके करे तो अच्छा है, जो फर्ज काम है वो ऐलानिया करे तो अच्छा है, जैसे फर्ज ज़कात है, नफली सदका छुपका छुपा के करे। कभी कभी लोगों को इंसेंटिव देने के लिए आपको खुलेआम भी कोई चीज बतानी पड़ती, कभी कभी कोई चीजें छुपी नहीं सकती। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं कैसे छुप जाऊं जाके, ये तो मुमकिन नहीं है ना। अब जब इंसान इल्म का सदका करता है, इल्म दूसरे को पहुंचाता है, तो वो जाहिर ही बात है फिर वो ऐलान हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ऐलानिया करने से कोई चीज जाया हो जाती है, हमारी नियतों के फतूर की वजह से जाया होती है। तो ऐलानिया में भी क्या इंसान की नियत है, और जो सिरी काम है, जो छुपे हुए काम है, वो आपके ज्यादा महफूज है, वो सिक्योर है। ऐलानिया काम जो है ना, वो बड़े खतरे में है, उनका जाया होने का खतरा होता है। तो ये कर लो, ये खर्च कर लो, यौमुल्ला बयाम फी वला खिलाल, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए कि जिसमें कोई तिजारत नहीं है। यानी इंसान ये नहीं कह सकेगा, अल्लाह मुझसे इतना माल ले ले, मुझे अजाब से बचा ले, अल्लाह मुझसे ये ले ले, मेरी ये चीजें ले ले, मेरी औलाद ले ले, मेरी फलां चीज ले ले, मेरा घर बार ले ले, मेरी जायदादें ले ले, अल्लाह मुझे छोड़ दे। हत्ता के कुरान में आता है कि इंसान जमीन भर सोना देने को भी तैयार होगा तो वो भी नहीं उसे लिया जाएगा, और ना कोई दोस्ती काम आएगी। इंसान फिर फौरन दोस्तों को देखता है, कॉन्टेक्ट्स को देखता है कि मेरे कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको कहूं कि मुझे छुड़ाएं, वो भी काम ना आएंगे। इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए, वो आता है ना अगले पारों के अंदर, ये आता है कि इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए और इंसान कहे कि अल्लाह तूने मुझे मोहलत क्यों ना दी, मुझे मोहलत दे कि मैं कुछ सदका कर लूं, मुझे मोहलत दे कि मैं नेक लोगों में से हो जाऊं, ताकि मैं नेक लोगों में हो जाऊं, मुझे तब तक मोहलत क्यों ना दी तुमने। तो ये अभी कर लेने का काम है, अल्लाह ताला बता रहा है कि ये वक्त खत्म हो जाएगा, ये वक्त चला जाएगा, कायम कर लो नमाज, आखिरी सांस तक नमाज पढ़नी है, जब तक इंसान का होश है ना तब तक नमाज पढ़नी है, चाहे डेथ बेड पे पड़ा हुआ, और इन्फाक भी करना है, जिंदगी भर करना है। जो कुछ भी आपको अल्लाह ने रिस्क दिया, किसी को माल नहीं मिला होता, वो उसके मुताबिक कोई और चीज अल्लाह ताला के रास्ते में दे दे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध, अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, व अनज़ला मिनस्समाए ईमान, और नाजिल किया आसमान से पानी, फखरज बिही मिनस्समरात रिज़्क़न लकुम, फिर उसने निकाली तुम्हारे लिए इस पानी के जरिए तुम्हारे लिए फल निकाले, रिज्क तुम्हारे लिए, व सखर लकुमुल फुल्क, और तुम्हारे लिए मुसखर कर दिए कश्तियां, ली तजरिया फिल बहरी भी अमरी, ताकि तुम्हें लेके वो चले उसके हुक्म से, तुम्हारे लिए चले समुद्रों के अंदर, व सखर लकुमुल अनहार, और मुसखर कर दिए तुम्हारे लिए नहरें। आप ये देखें थ्रू आउट इस आयत के अंदर, आप देख लें लकुम लकुम लकुम, और आगे भी वसखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, और तुम्हारे लिए मुसखर कर दिए सूरज और चांद को, एक दूसरे के पीछे लगातार चल रहे हैं, चलने वाले हैं। वसखर लकुम लैल व नहार, और तुम्हारे लिए मुसखर कर दिए रात और दिन को, लकुम लकुम लकुम, ये सब तुम्हारे लिए किया है। शुरू से देख लो कि आसमान और जमीन की पैदाइश से लेकर अल्लाह ताला ने दिन और रात के निजाम तक, और जो कुछ बीच में चल रहा है, इसमें दिन और रात आ जा रहे हैं, सूरज और चांद एक दूसरे के बीच चल रहे हैं, आसमानों से बारिशें हो रही हैं, फल निकल रहे हैं, ये सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए किया। कश्तियां चल रही हैं, तुम नहरें जिधर चाहते हो उधर बना लेते हो, ये कायनात सारी की सारी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने चला दी। आसमान जमीन कितनी बड़ी मखलूकात है, सूरज सितारे और चांद कितनी बड़ी मखलूकात हैं, सब लकुम लकुम लकुम। ऐ बंदे, फिर तू नहीं अल्लाह का बनता, तेरे लिए उसने सब कुछ कर दिया और तुझे अपने लिए बना दिया, सब कुछ को तेरे लिए, तुझे अपने लिए, लेकिन तू फिर भी ना उसका बना। ये कायनात अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देती है, आसमान और जमीन जो है ना, ये गवाही दे रहे हैं हमारा कोई बनाने वाला है। आसमान से जो पानी बरस रहा है, ये गवाही दे रहा है कि कोई रिस्क देता है। ये जो फल निकल रहे हैं, जो रिस्क समरात निकल रहे हैं, ये गवाही देते हैं कोई रिस्क देता है। ये जो कश्तियां चल रही हैं ये गवाही देती हैं कि कोई कुदरत रखने वाला है जो हमें चला रहा है। सारे का सारा इंतजाम कुछ गवाहियां दे रहा है, सारी कायनात गवाही दे रही है। ये इंसान को क्या मैसेज दे रही है कि इंसान तू भी अल्लाह के सामने इसी तरह झुक जा जैसे हम झुके, जैसे हम फरमा बरदार हैं। हम तो तुझसे बड़ी बड़ी ज्यादा जसीम मखलूकात हैं, मगर हमें देख हम कैसे फरमा बरदार। हमसे सबक सीख है इंसान। अल्लाह ताला ने दिखा दिए हैं कायनात की ये सारी चीजें कि वो रब तो छुपा हुआ है लेकिन उसकी मखलूक से उसको पहचानो, ताकि इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो अल्लाह ताला की इबादत का, उसकी गुलामी का, उसकी इताअत का, उसके आगे सर झुकाने की तड़प पैदा हो। लेकिन इंसान कम ही इन पे गौर करता है। क्यों? इसलिए कि इंसान यूज्ड टू हो चुका है इन सब चीजों को देख देख के। ये एक रूटीन की चीजें बन चुकी हैं, आदतन इनको देखता है। कुछ उसको हैरान करता ही नहीं, कुछ उसको अजीब लगता ही नहीं। कैसे ये सूरज निकल रहा है, कैसे ये चांद आता है, कैसे ये दिन और रात आ जा रहे हैं। ये ना कभी लेट हो रहे हैं, ना कभी सूरज चांद से आगे बढ़ रहा है कि आज सूरज ही सूरज चलता रहे जी, आज चांद नहीं निकलना ही नहीं। ना ही ऐसा होता है कि चांद सूरज में जाके गिर जाए, ना वो दूसरे के मदार में जा चला जाता, उसके ऑर्बिट में जाके वहां पे घूमना शुरू कर दे। ना सूरज लेट होता है कि आज मैं लेट हो गया, थक बहुत गया था कल से। ना रात ऐसे चलती है कि रात ही रात रहे, ना दिन ऐसे चलता है कि दिन ही दिन रहे। पिछले साल इस टाइम पे जिस वक्त सूरज गुरूब होना, इस साल भी उसी टाइम पे गुरूब होगा। जरा भी ना पहले ना बाद में, तुम्हें समझ नहीं आती, देखते नहीं तुम, सोचते नहीं। दिल की आंख से देखेंगे तो समझ आएगी, और अगर आदतन ही देखते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। और देखें सूरज चांद दोनों बराबर चल रहे हैं, चल रहे हैं। उस वक्त तो किसी को नहीं पता था, साइंस नहीं थी जो बताती कि सूरज भी चलता है और चांद भी चलता है। कुरान ने तब बता दिया। अल्लाह अकबर। मगर कहीं टकराव नहीं, कहीं पे एक दूसरे के साथ दखल अंदाजी नहीं, अपनी अपनी जगह पे चल रहे हैं, कहीं रुकना नहीं है, मुसलसल चल रहे हैं, दिन और रात मुसलसल आ जा रहे हैं। सूरज चांद घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, और इससे जिंदगी के असबाब पैदा होते हैं। ये क्या हमें सबक नहीं देते कि तुम भी घूमो किसी जात की गिर्द? कभी सर्दियों के अंदर लंबी रातें और छोटे दिन, गर्मियों में लंबे दिन और छोटी रातें। किसने बता दिया, किसने निजाम चला दिया, किसने ये मिनट्स और सेकेंड्स तक का तवाजुन रखा, इतना बैलेंस रखा और फिर उसको उसके ऊपर फिक्स कर दिया? सोचते नहीं, और लकुम को नहीं सोचते, लकुम को नहीं नोट करते। हम सोचते हमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। और कितनी अहमियत चाहते हैं कि रब कुरान में कहता है तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। सूरज चमक रहा है तुम्हारे लिए, बारिशें बरस रही तुम्हारे लिए, फल निकल रहे हैं तुम्हारे लिए, कश्तियां चल रही तुम्हारे लिए, नहरें मुसख्खर कर दी तुम्हारे लिए, सूरज चांद को चला दिया तुम्हारे लिए, और क्या चाहते हो? दिन और रात का निजाम चला दिया तुम्हारे लिए। फिर भी इंसान को शैतान मायूस करता है और कहता है तू तो कुछ भी नहीं है, जा मर जा जाके कहीं। वो खुद ही खुदकुशी कर लेता है, कहता मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं, और कितनी है इंपॉर्टेंस चाहते हो तुम? तो अगर गौर करने लगे ना तो इंसान मभूत रह जाता है। किस किस चीज को आप इग्नोर करोगे, किस किस चीज को आप पीछे करोगे? हर चीज तो रब का पता दे रही है। चाहे फूल की पत्तियां देख लो, चाहे नहरें बहती देख लो, चाहे घास देख लो, चाहे पत्ता देख लो, चाहे रास्ते देख लो, चाहे पहाड़ देख लो, चाहे कुछ भी देखो, किधर जाओगे? फबी आला रबी कुमा तो कसी भान, इतने सिस्टम्स चला दिए तुम्हारे लिए। आताकुम कुल्ली मा सअल तुमूहू, और दिया तुमको हर उस चीज में से जो भी तुमने उससे मांगी, जो भी तुमने उससे मांगा। इंसान अपनी जिंदगी में भी जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला ही अता करता है उसको, चाहे मांग किसी और से रहा हो, चाहे बुतों के आगे सर टेके माथे टेके, देता तो अल्लाह ही है। जो कुछ भी अता हुआ वो उसी ने अता किया, जो तुमने मांगा वो उसने दिया। हम कहते हैं लो हमारी तो दुआएं नहीं कबूल होती। अब वो वाली एक दुआ को पकड़ के बैठ गए कि वो वाली नहीं कबूली थी, देखा मैंने ये मांगा था। हालांकि यहाँ पे मांगने से मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो आपने जुबान से मांगा, यहाँ पे मांगने से वो मतलब भी है कि इंसान की जिंदगी की को जो मांग है ना, अल्लाह ताला ने वो सब पूरी की। यानी आपके सर्वाइवल की जो मांग है, आपका सर्वाइवल जिससे पॉसिबल है, वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। और वो बेशुमार चीजें हैं, हवा है, पानी है, खाना पीना है, दिन और रात है, फिर हमारे आज़ा हैं, आंखें हैं, कान है। किस किस ने इसके लिए दुआएं मांगी थी? अल्लाह मुझे कान दे देना, अल्लाह मुझे आंखें दे देना, अल्लाह मुझे पलकें दे देना, अल्लाह मुझे आईब्रोज दे देना, अल्लाह मेरा रंग ऐसा कर देना, मेरा चेहरा ऐसा बना देना, मेरे सर पे बाल दे देना, किसने मांगे थे? अल्लाह ताला ने बेशुमार चीजें दी, जो तुमने मांगी, जो तुमने नहीं मांगी वो भी अता फरमाई, कि वो जानता था कि तुम्हारी जिंदगी के लिए ये चीजें जरूरी हैं। देखो वो तुम्हारे साथ कैसा है और देखो तुम उसके साथ कैसे हो। हत्ता के तुम तो इतने उसके एहसानात तले दबे हुए हो कि इन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, अगर तुम गिनना भी चाहो ना उसकी नियमतों को, दिन रात गिनो, दिन रात गिनो, हमें कह देना कि अल्लाह ताला की कितनी नियमतें हमारे ऊपर, तो यकीन जाने हम मैक्सिमम 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 1 घंटे में लिख देंगे। उसके बाद हमें समझ ही नहीं आएगा और किस बात का कहूँ। पानी भी लिख दिया, हवा भी लिख दी, कान आंख नाक सब चीजें लिख दी, फिर उसके बाद सारी चीजें लिख दी, हम इस्लाम भी लिख दिया, कुरान भी लिख दिया, बस माँ वालदैन औलाद सब चीज लिख दी। अब और क्या लिखूँ? अब सोचने बैठ जाते हैं और क्या लिखूँ। अल्लाह ताला फरमाता है इतनी नियमतें मैंने तुम्हारे ऊपर की हैं, तुम तो गिन भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। हमें तो इसका मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि हम मिसाल के तौर पे 50 नेमते लिख देंगे, 60 लिख देंगे, कोई 100 लिख देगा, बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि अनकाउंटेबल, जिनकी गिनती हो नहीं सकती। इसका मतलब है बेहिसाब नेमते उसने तुम्हें दी, बेहिसाब। और मजे की बात ये है, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता तुम्हारे पर क्या क्या नेमते हैं, खुद ही नहीं पता। मैंने आपको पहले भी ये वाक्या बताया था ना, कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो आंख नहीं झपक सकता था, उसके बाद बाकी सब ठीक रहा, जिंदगी भी बच गई, बस आंख नहीं झपक सकता। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या हुआ थोड़े, क्योंकि ये आंख आप झपकते हैं, वाइपर है ये, आपकी आंखों को साफ करता है। आप थोड़े दिन में उसकी आंखों में गर्द पड़ने लगी, उनको उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, एक रेशम का कपड़ा लेकर और उससे अपनी आंखों को टैप करते रहा करो। अब वो तो अब रेशम का चाहे कपड़ा हो, लेकिन एक चीज है, टिश्यू ही क्यों ना हो, इतना मुलायम चीज ही क्यों ना हो। आप नाक भी साफ करते हैं, नाक तो बड़ी सख्त है, नाक भी साफ करते हैं, फिर भी छिल जाती है, जख्मी हो जाती है जब नजला जुकाम होता है। अब उसने सारा वक्त आंख को इस तरह करना, वो थोड़ी थोड़ी देर में बस यही करता रहता है, ताकि उसकी आंख जख्मी हो गई, पीप निकलने लगी। इंसान ने कभी सोचा आईलिड्स भी कोई नेमत है? ये आईलिड्स हैं, ये लिड है हमारे, कभी बंद होते हैं, कभी कितनी दफा झपकते हैं हम इनको दिन में कि हमें पता ही नहीं है। हम बैठे बैठे जब से लेक्चर हुआ कितनी दफा हमने झपक ली होंगी, कभी सोचा भी? ये भी हाँ, ये भी कोई नेमत थी, कभी नहीं सोचा। हाँ जब नेमत जाती है तो बड़ा एहसास होता है कि हाँ पेशाब बंद हो गया तो अब पता चला पेशाब करना भी एक नेमत थी, कब्ज हो गई तो पता चला है ये भी एक नेमत थी कि फुजला आराम से निकाल लेते थे। इन नेमतों को कभी सोचा था? मैदा काम कर रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, दांत चल रहे हैं, जुबान चल रही है, मुझे किसी ने वाकया बताया, वो बहुत ही एक मालदार बंदा था, उसने दावत की भी थी, बिजनेसमैन लोगों की दावत की थी, तो उन्होंने बताया कि यहां से वहां तक मेज थी, और कहते इतने खाने थे, हर तरह का खाना उन्होंने ला के रख दिया, तो इतनी वैरायटी थी, सबको नौकर सर्व कर रहे हैं, और वो जो जिसने दावत दी हुई थी वो बैठा हुआ था टेबल के कोने पे। अब सबको उसने कहा आप लोग खाएं, खुद नहीं वो कुछ खा रहा, तो उन्होंने कहा भाई आप नहीं खाते, मम्मी आप कह रहे हैं, तो उसने कहा मेरा खाना आ रहा है, जब आया तो पतली दाल बिल्कुल पानी की तरह, उसने कहा मैं सिर्फ यही खा सकता हूँ, सिर्फ मैं यही खा सकता हूँ, इतना माल दौलत उन्हें, हम सोचते हैं हम दौलतों से चीजें खरीद सकते, नहीं, जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं वो किसी दौलत से भी तुम नहीं खरीद सकते, कहीं से नहीं ला सकते, तुम इन नेमतों का शुक्र तो बाद की बात है, वो तो आप पहले गिनती तो करें, शुक्र तो बाद में अदा करेंगे ना, ये देखेंगे ये नेमत है अच्छा मैं इसका शुक्र अदा करूं, वो तो बाद में, आपको तो यही नहीं पता आपके ऊपर नेमतें कितनी, आपके पास है क्या क्या, आप कितने कीमती हैं, आपको पता ही नहीं अल्लाह ने आपको दिया क्या क्या हुआ, फिर कितना ना शुक्र है वो इंसान जो थोड़ी सी किसी तकलीफ के ऊपर कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, कहता है मैं अपने आप को खत्म कर लूं, कहता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहता मुझे तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है, कहता मैं तो बड़ा बदनसीब हूं, तुझे तेरे से ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अगर तू नेमतों को गिनना भी चाहे तो गिन भी नहीं सकता, और ये हम में से हर इंसान को मिली, ये नहीं कि सिर्फ बादशाहों को मिली हुई, हर एक को मिली हुई, फिर भी तुम ना शुक्री करते हो, अल्लाह ने जिंदगी की नेमत दी ना शुक्री करते, तुम अल्लाह की ना शुक्री करते, जब कहते हो मुझे कुछ भी नहीं मिला हुआ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हाय मुझे तो आज तक नहीं कुछ मिला, ये कैसे कलेमात है, ये सिर्फ ना शुक्री है, एक अल्लाह सेहत की सिर्फ एक नेमत भी वापस लेता है ना तो इंसान तिल मिला जाता है, हालांकि उसके पास बाकी सब नेमतें हैं, एक नेमत भी अल्लाह ले ले, तो ये तो एक एक नेमत कितनी कीमती, एक एक नेमत का अगर शुक्र अदा करें तो एक नेमत पे भी हम कभी सर सजदे से नहीं उठा सकते, कि कयामत के दिन एक पलड़े में आंख रखी जाएगी और दूसरे पलड़े में इंसान की सारी नेकियां रख दी जाएंगी, तो वो आंख बारी होगी और इंसान की सारी जिंदगी की नेकियां उसे एक आंख की कीमत नहीं दे सकेगी, अब और किन चीजों की बात करते हैं? फिर देवते तो बेहिसाब, एक आंख की कीमत जो इंसान ना दे सके वो बेहिसाब नेमतों की कीमत कैसे दे सकता है, इसके बाद होना क्या चाहिए कि इंसान झुक जाए अल्लाह के आगे और कभी सर ना उठाए, कभी सर ना उठाए, कभी उसकी नाफरमानी ना करे, कभी बातें ना बनाए, कभी मुंह से ना शुक्री के अल्फाज ना कहे, लेकिन इंसान क्या करता है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ्फार, अल्लाह ताला का शिकवा है कि इंसान बड़ा ही जालिम है और बड़ा ही ना शुक्रा है, बड़ा जालिम है कि वो शुक्र तो अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन उल्टा वो नेमतों को गिन ही नहीं सकता, उल्टा वो क्या करता है, जुल्म करता है, जुल्म इंसान कैसे करता है कि अल्लाह ताला को मानता नहीं, कुफर कैसे करता है कि उसकी नेमतों की ना शुक्री करता है, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता, अपने नफ्स पे जुल्म करके गुनाह करके वो बड़ा जालिम बन जाता है, और नेमतों की तरफ तवज्जो ना करके, और ये क्या कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं जी, ना शुक्री करता है, या नेमतों को किसी और की तरफ मंसूब कर देता है, फलां ने दिया मेरी अपनी मेहनत से मिला जी, मैंने खुद मेहनतें इतनी की, मैंने खुद इतना इल्म लिया, वो कहीं और ही मंसूब कर देता है, और जिसका शुक्र अदा करना था उसका कभी शुक्र अदा करता ही नहीं, और कैसे अदा करें, अल्लाह की इताअत करके, जितनी नेमतें ज्यादा हैं उतनी आजजी बढ़ जानी चाहिए, उतनी फर्मा बरदारी बढ़ जानी चाहिए, उतनी ही अल्लाह ताला के आगे इंसान की का झुकाव होना चाहिए, उतनी उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, उतनी ज्यादा उसकी इबादत होनी चाहिए, लेकिन उल्टा ही ज्यादातर देखा गया, जितनी नेमतें ज्यादा उतनी अल्लाह से दूरी, जितनी ज्यादा अल्लाह ताला नेमतों की बारिश करता है उतने ही ज्यादा इंसान नाफरमान होता चला जाता है, उतना ही अल्लाह को भूलता जाता है। जिसने नेमतें दी उसको ही भूल गए। इसीलिए बंदे को नेमतों को के मामले में क्या करना चाहिए, सुबह को भी तौबा करे और शाम को भी तौबा करे, क्योंकि लेने वाला हक कभी अदा नहीं कर पा सकता और देने वाला मुसलसल देता ही जा रहा है। ये नहीं कि एक दफा दी है, एक दिन नहीं दी, एक दिन ही इतनी नेमतें दी होती तो अभी कितना बार लग जाएगा ऐसी चीजों का जो गिनी ना जा सके, पहाड़ के पहाड़ होंगे। अब इतनी नेमतें एक दिन नहीं, मुसलसल मुसलसल हर आन हर लम्हा मुसलसल नेमतें। और यही तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या अल्लाह तेरी इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं, मैं तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, दाऊद यही मेरा शुक्र है कि तू ये समझ जाए कि तू मेरा कभी शुक्र नहीं अदा कर सकता। कि इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, ये इंसान के अंदर एहसास हो कि अल्लाह मैं जितना मर्जी कर लूं मेरी कमी रह ही जाएगी, क्योंकि मैं तेरा कभी शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। कैसे करूं, कैसे करूं जिन चीजों को मैं गिन नहीं सकता, जो मुझे कभी एहसास भी नहीं कि ये मेरे ऊपर नेमत है, मैं कैसे शुक्र अदा करूं। जिनका पता है उनका भी नहीं कर सकता कि अल्लाह मेरे अंदर तो कमी ही कमी है। ये एहसास हो जाना कि अल्लाह मैं जितना भी झुक जाऊं, जितनी भी फर्मा बतारी कर लूं, सारी जिंदगी भी इबादत में गुजारू, तो अल्लाह मैं तो नहीं शुक्र अदा कर सकता। ये एहसास हो जाना, ये अल्लाह ताला को पसंद है। इंसान ये एहसास कर ले, उल्टा इंसान अल्लाह ही को भूल जाए, उसका खाया हुआ खा के, उसका दिया हुआ खा के और फिर उसकी नाशुक्री में लग जाए, फिर एक्टिव हो जाए उसकी नाफरमानी के काम करने में। तो कौन कौन सी नेमत ऐसी है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली हुई है, हम नहीं शुमार कर सकते। इसको मान जाए और इसका हर वक्त दिल में एहसास रखे, कौन कौन सी नेमत है जो कि हमें हम इंजॉय कर रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, हर लम्हे पा रहे हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं है। बल्कि ये कहें कि कौन सी चीज नहीं हमें वहां से मिली, हर चीज ही तो वहां से मिली, कौन सी नहीं मिली। इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारे, जब तक आपके अंदर ये एहसास बाकी रहेगा आप झुके रहेंगे, आप फरमा बरदारी में लगे रहेंगे। और जिस दिन इस एहसास में कमी होती है, इंसान सर उठाना शुरू कर देता है, उसमें सरकशी आती है, नाफरमानी आती है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें नेमतों का एहसास करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला हमें शुक्र गुजार बंदियां बना दे कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने में ही लगे रहे, और अल्लाह ताला हमें अपनी नाशुक्री से महफूज रखे, और अल्लाह ताला नेमतों के जवाल से हम सबको महफूज रखे कि हमारी नाशुक्री की वजह से कहीं हमसे नेमतें ना छिन जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومهني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.